नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, इन खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर फोर दौर में भारतीय टीम का मुकाबला कोरिया से जारी। भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ISSF रैंकिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शीर्ष पर पहुंची। नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज, आर्याना सबालेंका और पेगुला US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत के यूकी भांवरी और न्यूजीलैंड के माइकल बीनस पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में। और फिडे ग्रैंड स्विस 2025 शतरंज प्रतियोगिता कल से उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू होगी। बिहार के राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में सुपर फोर दौर का आगाज हो गया है, जहां राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय टीम का मुकाबला कोरिया से इस समय जारी है। और अब सीधा चलते हैं स्टेडियम में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र, बारिश के बाद मैच वापस शुरू हो गया है और क्या स्थिति है इस समय?
जी शक्ति, करीब 7 मिनट का खेल जो हो चुका है और शुरुआत में ही भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला कोरिया के खिलाफ, लेकिन भारतीय टीम उसे गोल में तब्दील करने में विफल रही। और आज का जो मैच है ये करीब 1 घंटे देर से शुरू हुआ बारिश के कारण, लेकिन दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर काफी होम ग्राउंड पर सपोर्ट है दर्शकों का और सबकी एक ही इच्छा है कि भारत जीते और 8 साल के अंतराल के बाद अगले चरणों में अपनी जीत दर्ज करते हुए एशिया कप का खिताब जीते। तो रोचक मुकाबला जारी है वर्षा से बाधित मैच में।
जी,
और इससे पहले जो है जो सुपर फोर दौर का पहला मुकाबला मलेशिया और चीन के बीच खेला गया, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली। मलेशिया ने भी जबरदस्त खेल दिखाया और चीन ने कांटे की टक्कर दी और मलेशिया की टीम 2-0 के मुकाबले इस मैच में जीतने में सफल रही।
जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि बारिश जो है लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं डाल सकी और खेल में भी कोई बाधा नहीं कर सकी। मुकाबला वापस एक बार शुरू हो गया। धन्यवाद धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गिरीश जी, यहीं से चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये क्या हो गया और मुकाबला कब शुरू होगा।
हॉकी की सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट की पिच की तरह पूरी तरह सुखाना नहीं पड़ता, हालांकि कई बार बारिश के बीच में भी जो है मैच चलता रहता है फुटबॉल हॉकी, लेकिन यहां पर काफी अचानक से बारिश हुई। जैसा धर्मेंद्र अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, लाइव भी बता रहे थे कि मलेशिया और चाइना का जो 2-0 से हुआ, उसके अलावा एक और मैच हुआ जो जापान ने चाइनीज तापे को 2-0 से वहां भी हराया, और ये तीसरा मैच था दिन का जिसमें भारत जो है पूर्व चैंपियन साउथ कोरिया से जो है वो अब वहां पर ये जो पहले क्वार्टर का जो मैच चल रहा है। तो शक्ति, भारतीय टीम अब तक जो है अपराजित रही है इस टूर्नामेंट में। जो आप अगर लीग मुकाबले का देखेंगे तो हमने इसमें जापान को 3-2 से हराया, पिछला मैच जो कजाकिस्तान के साथ था 15-0 से वहां हराया, और पुल का जो पहला मैच था जिसमें चीन को हमने 4-3 से हराया, उसमें कप्तान हरमनप्रीत ने 3 गोल किए। तो ये तो हम मैच जीते, पहले आप 2 मुकाबले देखेंगे तो वो बहुत हमारे लिए कड़े मुकाबले हुए, एक तरफा आप नहीं कह सकते वहां। और फिर कजाकिस्तान खैर हमारे इतने
मजबूती
नहीं, तो 15-0 का स्कोर आप कह सकते हैं, कई लोगों ने उसमें हैट्रिक, कई प्लेयर्स ने हैट्रिक लगाया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो है जब मलेशिया के साथ मुकाबला होगा, वो अपने पुल में शीर्ष पे है वहां पर। साउथ कोरिया हालांकि पूर्व चैंपियन है लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पिछले 4-5 मैच हम उनसे जीते हैं, तो इस लिहाज से हमारा पलड़ा भारी है। और यहां पर चूंकि एशिया कप जो जीतेगा, अगर भारतीय टीम जीतती है, सीधा अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए हम क्वालिफाई करेंगे। हमारे पास एक मौका था क्वालिफाई करने का जो हमने गवा दिया, वो था जो FIH प्रो लीग इस साल हुए। और इस साल आप जो देखें तो नतीजे जो रहे, जून से स्टार्ट शुरू हुए, हम नीदरलैंड्स में पहले खेले, वहां पर नीदरलैंड्स से दोनों मैच हारे,
پھر ارجنٹینا سے دونوں میچ ہارے، پھر آسٹریلیا جب وہ اینٹورپ گیا جب یہ پرو لیگ، تو وہاں پر آسٹریلیا سے بھی ہم دو میچ ہارے، حالانکہ جو گھریلو ٹیم بیلجیم تھی ان سے پہلا میچ ہارنے کے بعد دوسرا میچ ہم جیتے. تو آپ دیکھیں تو کریگ فلٹن اور ہرمن پریت کی یہ جو ٹیم ہے ان کا پردرشن بہت اچھا نہیں رہا ہے، حالانکہ ہم نے اولمپک میں جو ہے کانسے پدک جیتا، لیکن آپ پچھلا جو آپ بھی دیکھیں گے کافی وہاں پر کمیاں ہیں، اور اس کمیوں کو اس ٹیم کو سدھارنا پڑے گا آگے ان کو، اگر بڑے ٹورنامنٹ میں ڈائریکٹ اگر کوالیفیکیشن کرنا ہے. اور اس طرح سے ایشیا کپ میں مانا جا رہا ہے کہ بھارت کا مقابلہ چین سے تیسری بار فائنل میں ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی ابھی ایک بار بھارت کا مقابلہ ہوگا جو آپ
جی بالکل سپر فور
سپر فور میں جو آپ بات کر رہے ہیں. تو چین کی جو ٹیم ہے آپ دیکھیں تو چین کی ٹیم نے جس جو لے پائی ہے، ان کی جو ایک کوچنگ بینچ ہے جنہوں نے کام کیا ہے، وہاں پر اوٹسمین بھی ہیں ان کے ساتھ ایک سہیوگی کے طور پہ جو بھارت کے ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر رہے ہوئے، تو اب وہ جو ٹیم ہے وہ اچھا پردرشن کر رہی ہے. تو بھارت کو وہاں بھی ایک لکیر پار کرنی پڑے گی، تب ہم جا کے ایشیا کپ جیتے اور پھر اس کے بعد اگلے سال کے لیے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں.
جی بالکل، یہ ٹورنامنٹ بھارت کے لیے کئی دشٹی سے بہت اہم ہونے والا ہے، اور بھارتی ٹیم کی بھی امیدیں ہوں گی کہ وہ اس پرتیوگتا کو جیت کر کے اپنی لے کو واپس تلاشنے کی کوشش کریں. بھارتی نشانے باز سروچی سنگھ انتراشٹریہ نشانے بازی کھیل مہا سنگھ ISSF کی آج تازہ جاری رینکنگ میں مہیلاؤں کی 10 میٹر ایئر پسٹل اسپردھا میں شیرش استھان پر پہنچ گئی ہیں. 19 ورشیہ سروچی نے اپنے کریئر میں پہلی بار یہ اپلبدھی حاصل کی ہے. انہوں نے 4162 انک ارجت کیے. اولمپک پدک وجیتا منو بھاکر اس سوچی میں چھٹے استھان پر ہیں. وہیں 25 میٹر ایئر پسٹل رینکنگ میں سروچی چوتھے استھان پر، جبکہ بھارت کی ایشا سنگھ چھٹے استھان پر ہیں. وہیں ابھی حال ہی کے کھیلوں میں لگاتار 3 پدک جیتنے والی سفت کور سامرا 50 میٹر رائفل 3 پوزیشنز مہیلا ورگ میں 3034 انکوں کے ساتھ دوسرے استھان پر ہیں، جبکہ آشی چوک سے 10ویں استھان پر. مہیلاؤں کی 10 میٹر ایئر رائفل میں ایلا وینل والاروین 2604 انکوں کے ساتھ 5ویں استھان پر ہیں. تو بھارت کی طرف سے کافی نوجوان اور یواش نشانے باز نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچی ہیں.
19 سال کی عمر آپ کالج کی دہلیج پہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر سروچی سنگھ جو ہے وہ جھجر ہریانہ کی ہیں، اور اسی سال انہوں نے انٹرنیشنل ڈیبیو کیا. اور آپ دیکھیں تو اس سال بیونس آئرز، فلیما اور میونک میں، اس میں انڈیویجول کیٹیگری پہ انہوں نے 10 میٹر ایئر پسٹل میں ایک کے بعد ایک چیمپئن شپ جیتی، اور پھر لیما میں ہی مکس ایونٹ میں بھی ان کا گولڈ میں ان کا شرے ہے. اور آپ تو اس لحاظ سے کافی ایک بہت بڑی اپلبدھی اسے کہہ سکتے ہیں. چائنا کی یاو کوانزم جو ہے جو ان سے پیچھے 3195 پوائنٹ کے ساتھ. تو 19 سال کی سروچی اس سال ڈیبیو کر رہی کرتے وقت، اور ابھی تو سال بچا ہے، تو انہوں نے جو پرچم لہرایا بھارت کا، یہ بہت بڑی خبر ہے بھارت کے لیے.
جی بالکل، ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت سکھد خبر بھارتی نشانے بازی کے لیے. اور اب رخ کرتے ہیں ٹینس کا، جہاں یو ایس اوپن میں پروش سنگلز میں 24 بار کے گرینڈ سلیم وجیتا نوواک جوکوویچ کوارٹر فائنل میں ٹیلر فٹس کو 6-3, 7-5, 3-6, 7-6 سے ہرا کر 53ویں بار گرینڈ سلیم سیمی فائنل میں پہنچ گئے. وہیں ایک انیہ کوارٹر فائنل میں اسپین کے کارلوس الکراز نے جیری لیہکا کو 6-4, 6-2, 6-4 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پرویش کیا. اب سیمی فائنل میں الکراز کا سامنا جوکوویچ سے ہوگا. وہیں مہیلا سنگلز میں وشو نمبر ایک اور موجودہ وشو چیمپئن آرینا سبالنکا سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. کوارٹر فائنل میں ان کی پرتیدوندی مارگریٹا وندروسووا کو چوٹ کے کارن باہر ہونا پڑا، جبکہ پیگولا بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. بھارت کے یوکی بھانوری اور نیوزی لینڈ کے ان کے جوڑی دار مائیکل وینس نے بھی اپنا شاندار پردرشن جاری رکھتے ہوئے سیدھے سیٹوں میں شاندار جیت درج کی اور پرش ڈبلز کے کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. بھارت اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کی یہ جوڑی پری کوارٹر فائنل میں چوتھی وریتا پراپت جرمن جوڑی کیوین کووڈز اور ٹیم پورٹس کو 6-4, 6-4 سے ہرا کر کے کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے، جہاں پہ ان کا سامنا کروشیا کے مکولا میکٹک اور امریکہ کے راجیو رام سے ہوگا. تو بھارت کے لیے بھی کچھ جو امیدیں تھیں وہ بھی کافی اچھی رہی، اور اب دھیرے دھیرے سیمی فائنل کا اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے.
بالکل، آپ نے دیکھیں یوکی بھامری کے لیے یہ پہلا کوارٹر فائنل گرینڈ سلیم ہوگا، اور 2014 سے وہ مشقت کر رہے ہیں گرینڈ سلیم ڈبلز میں، اور 2014 میں جب ان کا آپ دیکھیں گے تو آنکڑا وہ اس 2014 میں اگر آپ آسٹریلین اوپن میں دیکھیں تو وہ تھرڈ راؤنڈ میں گئے، پھر فرینچ اوپن جو تھرڈ راؤنڈ 2025 میں پار کیا، اور ومبلڈن تھرڈ راؤنڈ 2025. तो यूएस ओपन में पहली बार क्वार्टर फाइनल, तो थर्ड राउंड के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल आया। तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि यूकी भामरी और न्यूजीलैंड के जो उनके जोड़ीदार है माइकल वेनस, इन 14वीं वैधता प्राप्त इस जोड़ी ने जर्मन जोड़ीदार जो केविन क्रुटजेट एंड टीम पुरिस को ये चौथी वैधता प्राप्त थे, और ये पिछले साल के फाइनलिस्ट थे
जी बिल्कुल,
और उनको हराना बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो माइकल विनस का है, कि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के बाद फ्रेंच ओपन के विजेता है डबल्स में 2017 के, और फिर यूएस ओपन में वो 2024 और 25 में जैसे इस बार लगा के क्वार्टर फाइनल, विंबलडन के वो फाइनलिस्ट रहे 2018 में। तो इस लिहाज से हमारी जो जगह बनती है उसमें दोनों की भागीदारी काफी तालमेल बैठता है। यूकी भामरी तो एक टेनिस परिवार से आते हैं, उनकी दोनों बहनें जो है टेनिस खेलती आई हैं। और जो आप बात कर रहे थे राजीव राम की और उनसे जो मुकाबला होगा, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे जो प्लेयर हैं आप ये देखें तो उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक वो बहुत ही मंझीवी जोड़ी है
जी बिल्कुल, भारत के लिए यहां से चुनौतियां जो हैं वो और कठिन होंगी जैसे जैसे दौर आगे बढ़ेगा। और अब बात करते हैं शतरंज की। शतरंज की जानी मानी फिडे ग्रैंड स्विस 2025 प्रतियोगिता कल से उज्बेकिस्तान में समरकंद में शुरू होगी, और 15 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विश्व के शतरंज के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भाग लेंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
इस बार सबकी नजरें आर प्रज्ञानानंद पर रहेंगी, उन्हें प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में शीर्ष वरीयता मिली है। उनके साथ विश्व चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और मौजूदा चैंपियन विदित गुजराती भी मजबूत भारतीय टीम का हिस्सा हैं। भारत की महिला चैंपियन दिव्या देशमुख भी ओपन वर्ग में चुनौती रखेंगी। महिला वर्ग में भारत की मौजूदा चैंपियन वैशाली रमेश बाबू से सबसे अधिक उम्मीद है, जो आत्मविश्वास और दमदार फॉर्म के साथ वापसी कर रही है। वंतिका अग्रवाल जैसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी उनके साथ नजर आएंगी। इस प्रतियोगिता में 172 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 116 ओपन वर्ग में शामिल हैं। प्रत्येक वर्ग से शीर्ष दो खिलाड़ियों को 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रवेश मिलेगा। ये प्रतियोगिता 11 दौर के स्विस प्रारूप में होगी। इसमें ओपन वर्ग के लिए $625,000 और महिला वर्ग के लिए $230,000 की पुरस्कार राशि रखी गयी है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
भारतीय शतरंज खिलाड़ी अब किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं तो उनसे उम्मीद ये होती है कि खिताब के साथ लौटेंगे और एक और प्रतियोगिता तैयार है उनके लिए।
बिल्कुल, 11 राउंड जैसा मुकेश बता रहे थे। एक और जो कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे, तो कैंडिडेट्स में क्या होता है कि 8 जो है खिलाड़ी भाग लेते हैं पुरुष और महिला वर्ग में। तो आप अगर वहां देखें तो फिडे सर्किट 2024 और 25 के जो एक टॉप प्लेयर होगा वो उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलता है। फिर ग्रैंड स्विस से दो खिलाड़ी जो अभी जो मौजूदा चैंपियनशिप होगी उससे दो खिलाड़ी आएंगे, तो तीन ये हो गए। और इस साल गोवा में वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, वहां से तीन खिलाड़ी निकलेंगे, तो अब ये बन जाते हैं 6। और दो खिलाड़ी वहां से आते हैं जो 6 महीने की जो हाईएस्ट रैंकिंग एवरेज जिनकी होती है, वहां से ये टॉप 8 में। अगर अपने श्रोताओं को याद होगा कि डी गुकेश ने 2024 का कैंडिडेट जीता था, और अर्जुन रियासी के पास भी मौका होगा, और फिर विदित गुजराती जिन्हें 2023 में जगह बनाई थी उनको थोड़ा फॉर्म सुधारना होगा क्योंकि थोड़ा सा उनकी रैंकिंग जो है पिछड़ी है। लेकिन भारत की एक फेहरिस्त है भारतीय चेस खिलाड़ियों की, प्रगनंद है वहां पर, तो इस तरह से और मतलब हमारी जो प्लेयर्स हैं उनके पास प्रबल वो एक दावेदार बन रहे हैं इसके लिए कैंडिडेट्स में भागने के लिए।
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय खिलाड़ी जब भी कभी शतरंज के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो वो प्रबल दावेदार होते हैं खिताबों के। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कल से इंग्लैंड के लिवरपूल में शुरू होने जा रही है। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व मुक्केबाजी की नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वाधान में किया जा रहा है। भारत की तरफ से टोक्यो में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन भारतीय 20 सदस्यीय दल का नेतृत्व करेंगी। और श्रोताओं, बात कर लेते हैं हॉकी की भी, जहां पे एक अपडेट आ गया है भारत के लिए। भारत ने मैच में अपना पहला गोल दाग दिया है। भारत के लिए ये काम 8वें मिनट में हार्दिक ने किया, जहां पे भारत ने 1-0 की बढ़त बना दी।
लेकिन एक और अपडेट है कि जो कोरिया ने गोल करके 1-1 की बराबरी कर ली है और 12वें मिनट में उन्होंने गोल किया, तो इस लिहाज से भी मुकाबला बराबरी पर है।
जी बिल्कुल, यानी कि अब भारत को बराबरी यहां पे मिल गई है मुकाबले में। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। गिरिजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद शक्ति।